चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रवे नमः श्रीचैतन्याभीष्टं स्थापितं येन भू स्वयं रूपः कदा मह्यं स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदगुरून् वैष्णवांश्च साग्रजातां सरघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसन्यदेवं श्रीकृष्णपादां सह गणका श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपाधाकांत नमस्तुते तप्तकान्ति राधे वृंदावनेश्वरी वृषसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च नानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः दाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्री वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे पाश्चात्य देशतारिणे भो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वै गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा। स्वागत आप सबका। अभी कुछ ही दिनों में वाला है और वो है भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य। रामनवमी का उत्सव मनाया, नरसिंह चतुर्दशी जो अगले महीने की को है 15 मई। भगवान नरसिंह देव की कथा को प्रारंभ करेंगे और नरसिंह कथा को आप लोग सुनते रहेंगे। सो भगवान के अवतार की कथा है, शिक्षाओं को हमें प्रदान करती है, ऐसा नहीं है कि केवल अब जो हमने पढ़ा प्रहलाद के लिए वो प्रकट हुए, उससे पहले कभी भगवान नहीं। भगवान बहुत सारे रूपों में प्रकट होते हैं। नरसिंह देव एक समय जैसे तो वो आधा नर और आधा सिंह, इसलिए रूप था उनका। लेकिन एक समय आए हैं जहां उनका आधा शरीर और आधा शरीर बिल्ली का था। ये भी रूप है शास्त्रों में। आज भी एक मंदिर है जिसमें ये रूप है, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी से करीब 300 किलोमीटर नहीं और आगे जाकर है। सो वहां भगवान आए कि एक असुर था जिसने चूहे का रूप लिया था, तो फिर भगवान उसको मारने के लिए ऐसे आए थे। तो अलग अलग रूप लेते हैं भगवान। रूप किस लिए होते हैं? नरसिंह देव ऐसा रूप क्यों लेते हैं? सिंह। सो ये बड़ी विचित्र मान सकते हैं। कभी कभी मन में ये आता है, जिन लोगों के हृदय में भक्ति सभ्यता का पालन नहीं किया, उनके मन में ये विषय आता है, ये प्रश्न आता है, भगवान की पूजा करते हैं जो पूरा मनुष्य भी नहीं है और पूरा जानवर भी नहीं है, तो ऐसे भगवान की ये लोग कैसे पूजा कर सकते हैं? ऐसे कई लोग मानते हैं, बातें करते हैं, पूछते हैं से भगवान है। सो भगवान अलग अलग रूप नहीं है कि भगवान केवल इसी रूप में प्रकट होंगे। जब भगवान आते हैं अवतरती इति अवतार, जब भगवान अपने धाम से निकलते हैं और अलग अलग रूपों में आते हैं। तो इस कथा में अब हम कथा को प्रारंभ था आगे जाएगी, बहुत सारे प्रश्नों के हमारे उत्तर मिलेंगे। कई प्रश्नों के उत्तर दे देता है। किसी के मन में हो सकता है कि भगवान पक्षपात करते हैं, भक्त हैं उनको तो वो बहुत कृपा करते हैं और जो भगवान के भक्त नहीं है ये कैसे भगवान हैं? भगवान के लिए तो सारे, लेकिन हम देखते हैं कि भगवान ऐसा करते हैं, तो क्या भगवान पक्षपात किसी एक को अच्छा देते हैं, किसी को बुरा देते हैं? और जैसे हम लोग जगत में भी जानते हैं कुछ है और किसी के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास कुछ नहीं है वो भगवान आपने मुझे ऐसे क्यों रखा, उसको आपने बहुत दिया मुझे नहीं दिया। भगवान के अंदर भी ये भावना है जैसे हम लोगों में होती है कि इसको थोड़ा सा ज्यादा दे दो, इसको कम दे दो। इसका उत्तर हमें इस नरसिंह कथा से मिला। नरसिंह कथा ये बहुत पावन करने वाली है। केवल श्रवण पुराणों में है, और श्रवण ही नहीं, नरसिंह देव इतने कृपालु कि वर्णन किया गया है कि अगर कोई मात्र बार जीवन में, ये नरसिंह पुराण में वर्णन है, क्या कृपा है भगवान की, हम लोग इसको समझ नहीं। अगर एक बार भी कोई जीवन में भगवान नरसिंह देव के ऊपर दूध से अभिषेक कर देता है, पानी से अभिषेक, पानी से का अभिषेक कर देता है, तो नरसिंह पुराण कहता है कि निश्चित है वो एक दिन भगवान को प्राप्त करेगा, एक बार जीवन। तो नरसिंह कथा प्रश्नों का उत्तर देती है। हृदय में प्रेम, ये जो कथा है ये प्रेम की कथा है, एक भक्त प्रति प्रेम, भगवान का अपने भक्त के प्रति प्रेम, तो प्रदान प्रदान है ये कथा, नरसिंह कथा। नरसिंह देव को बिना भक्ति के देखता है तो उसको लगता है क्या देख रहे थे, तो प्रहलाद को क्या लग रहा था? प्रहलाद ने ये नहीं सोचा कैसा रूप है, वो कोई भी रंग के कपड़े पहनकर बच्चे के सामने आ जाए, बच्चा घबराता नहीं है पिता से, उसको वो देते हैं। और इसीलिए कि हम भक्ति भाव से प्रेम से भगवान भगवान की कृपा को समझने का प्रयास करें। एक तरफ प्रेम को दर्शाती है और दूसरी भगवान की कृपा की कोई सीमा नहीं है। इस जगत में व्यक्ति अगर कृपा करे तो थोड़ा बहुत कर सकता है, कोई सीमा नहीं है, वो इस कथा से हम लोग सीखते हैं। और जैसे जैसे कथा, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर और बहुत सारी शिक्षाएं हमें मिलेंगी, क्योंकि इस कथा का प्रारंभ होता है परीक्षित महाराज सुन रहे हैं, मरने वाले हैं, घोषणा हो चुकी मृत्यु होगी और परीक्षित रहे हैं। और उन्होंने प्रश्न किया, परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आया कि उन्होंने सुना, काफी सुना, मारते हैं और भक्तों को बड़ा प्रेम कर दिया सुखदेव गोस्वामी से कि ऐसा लगता है कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, इनको अच्छा देते हैं, इनको बुरा देते हैं, क्यों करते हैं ऐसा भगवान, भगवान तो भगवान है लेकिन फिर भी करते हैं, तो क्या कारण है? तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि क्या भगवान ऐसे हैं या भगवान भगवान को समान होना चाहिए कि नहीं, हम सबके पिता हैं तो पिता को समान होना चाहिए, एक को बहुत कुछ दे दिया दूसरे को कुछ नहीं दिया, एक को अंधा बना दिया दूसरे को आंखें दे दी, क्यों करते? तो कि भगवान ये जो हम लोग चीजें देखते हैं ना, कम ज्यादा, धन निर्धन चीजें हैं, ये केवल इस जगत में है। भगवान भगवान को क्या लेना देना आपके धन और निर्धन से, भगवान को क्या लेना और आपके कमजोरी से, भगवान इसके परे के लिए, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने सोचा कि इतना अच्छा प्रश्न समझाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने कहा ऐसा ही प्रश्न नारद मुनि से किया गया था, और अब तो उन्होंने बताया कि कब का समय था और क्या प्रश्न था। उन्होंने कहा यज्ञ का, युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ का, सूय यज्ञ क्या होता है, वो एक यज्ञ होता है जिससे सारी पृथ्वी का राजा बना जाता है, उसको स्वीकार करते हैं अपने महाराज के रूप में, सम्राट के रूप में। परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे हैं राजसूय भगवान कृष्ण की उपस्थिति में, और सुंदर वर्णन है राजसूय यज्ञ का। उस यज्ञ में अनेक अलग लोकों से लोग आए हैं और सब कोई सेवा कर रहे हैं, दुर्योधन सेवा कर रहे हैं, यज्ञ है दुर्योधन सेवा कर रहे हैं, जो भी गिफ्ट आ रहा है दुर्योधन इकट्ठा कर रहे हैं, द्रोणाचार्य सेवा कर रहे हैं, भीष्म सेवा कर रहे हैं, सब सेवा। अच्छा मुझे भी कुछ करना है, मैं भी सेवा करना चाहता हूं। देखिए ये भगवान है, तो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, हम भगवान का नाम भी लेना नहीं चाहते। दरअसल जो चीजें भगवान हमें देते हैं के लिए केवल धन्यवाद रोज देना चाहिए भगवान को। किसी ने हमसे प्रश्न किया था, हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं, आप सब कर लोग करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। किसी ने प्रश्न किए आप लोग रोज क्यों करते हो, कभी कभी कर लिया करो, जन्माष्टमी, रामनवमी, चतुर्दशी, संडे के संडे, ये रोज रोज आप वही नाम क्यों लेते हो, वही हरे कृष्णा। हमने कहा आप लोग भी तो रोज रोज वही सूर्य पीते हो, आप लोग भी रोज वही पानी पीते हो, रोज रोज क्यों पीते हो, एक बार पी लिया करो, जन्माष्टमी के दिन पी लिया करो, खाते भी हैं रोज, सूर्य का प्रकाश लेते हैं रोज, हवा ले तो सांस भी आप कम से कम हफ्ते में एक बार ले लिया करो। तो हमने कहा जब आप रोज जो चीजें लेते हो, भगवान की हवा लेते हो, भगवान का पानी लेते हो, प्रकाश लेते हो, तो इतने गिर गए हो कि रोज भगवान को धन्यवाद भी नहीं दे सकते और उनका नाम देंगे, तो इसलिए जब हम रोज ये चीजें भगवान से ले रहे आइए और रोज कुछ खरीदिए वहां से, पैसा देना होगा या नहीं देना होगा, या वो व्यक्ति उधार दे सकता है लेकिन पैसा तो देना होगा। चीजें खरीदने के लिए पैसा देना होता है तो ये चीजें जो हमें मिल रही हैं, इसके लिए क्या हम भगवान को इतना भी नहीं दे सकते, उनका नाम भी नहीं ले सकते? इतने हुए नहीं हो जाना चाहिए हमें कि हम केवल लेते रहें और दे नहीं भगवान। तो इसलिए नाम भगवान का लिया जाता है। तो तपस्वी यज्ञ में तो क्यों लिया जाता है? भगवान से प्रेम है इसलिए लिया जाता है भगवान को, और भगवान भी सेवा करना चाहते हैं, हम नहीं करना चाहते, भगवान करना चाहते हैं। भगवान ने कहा मुझे भी सेवा करनी है, युधिष्ठिर ने कहा आप चुन लीजिए जो भी आपको सेवा करनी है। भगवान ने कहा कि मैं दरवाजे पर खड़ा रहूंगा और जो भी लोग आएंगे धोऊंगा मैं, उनके पांव धोऊंगा मैं। तो युधिष्ठिर आप जो चाहे कर सकते हैं, ठीक है करिए। तो राजसूय यज्ञ में खड़े हैं दरवाजे पर और जितने ब्राह्मण आ रहे हैं, जितने भक्त आ रहे हैं बाहर अलग अलग कोने से, कृष्ण उनके पैर धो रहे हैं, आइए मैं पैर धोता हूं। तो फिर उस समय नारद मुनि आए, युधिष्ठिर महाराज से एक प्रश्न किया। उस समय मोबाइल नहीं थे तो इसीलिए प्रश्न सुनाई दे गया, बंद करिए, ये भगवान की कथा चल रही हो, हम भगवान हमें खींचकर वहां से ले आते हैं कि नहीं चलो यहीं रहो, जीना यहां मरना यहां। शुक्रिया सब लोग अपने मोबाइल से, जिनके पास नहीं है भाग्यवान लोग हैं। तो भगवान सेवा कर रहे हैं तो नारद मुनि आए, नारद मुनि ने कहा युधिष्ठिर महाराज से, अरे युधिष्ठिर देखो तुम्हारे यज्ञ में कितने सारे ब्राह्मण आए, वो देखो वो हैं, वो महर लोक से आए हैं, वो जन लोक से आए हैं, वो स्वर्ग लोक से आए हैं, इतने सारे ब्राह्मण आ गए हैं, जानते हो क्यों आए हैं? तो युधिष्ठिर भगवान के भक्त हैं, युधिष्ठिर का मैं जानता हूं क्यों आए हैं। अच्छा क्यों आए हैं बताओ, नारद मुनि ने पूछा। तो उन्होंने कहा भगवान को देखने आए हैं, कृष्ण को देखने आए हैं, कौन सी बड़ी बात है पूछने के लिए, हम सब जानते हैं वो कृष्ण को देखने आए हैं। नारद मुनि ने कहा बिल्कुल नहीं, वो लोग कृष्ण को देखने नहीं आए हैं, वो जानते हैं भगवान है कृष्ण, वो कृष्ण को देखने नहीं आए यहाँ पर, उनको देखने यहाँ क्यों आना है, वो द्वारका चले जाते, वो ब्रज में चले जाते। तो उन्होंने कहा बात तो सही है, तो यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने कहा ये सारे लोग ये जो ब्रह्मांड से आए हैं, ये सारे लोग जो ब्रह्मांड से आए हैं ये आपको देखने आए। युधिष्ठिर को मुझे मेरी क्या योग्यता है, मैं थोड़ी भगवान हूं। तो उन्होंने कहा इसीलिए आए हैं देखने आपको कि आप भगवान नहीं है। तो नारद युधिष्ठिर ने ये कैसी बात है, अरे भगवान को देखने लोग आते हैं तो सबको पता है, और मैं भगवान नहीं हूं और मुझे देखने क्यों आए हैं? नारद मुनि ने कहा कि सारे लोग देखने आए हैं, कौन है वो व्यक्ति जिसके द्वार पर खड़े होकर कृष्ण आने वालों के पैर धो रहे हैं, कोई महान व्यक्ति होगा उसको देखकर आते हैं कौन? तो ये भगवान के भक्त हैं, भगवान कितना उनका गुणगान करते हैं, देखिए उनका गुणगान कराने के लिए भगवान खड़े हैं द्वार पर। जैसे मान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री को मिलने के लिए सब लोग आना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री गेट पर खड़े होकर सबका स्वागत कर, आइए आइए अंदर बड़ा अच्छा प्रवचन चल रहा है, आइए आइए प्रवचन सुनिए, तो लोग आएंगे ना देखने, एक है कौन प्रवचन कर रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री बाहर खड़े होकर बुला रहे हैं सबको, राइट? तो वही स्थिति थी राजसूय यज्ञ में। फिर राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, अग्र पूजा होनी थी सबसे पहले। अग्र पूजा मतलब सबसे पहले किसकी पूजा हो, जब भी कोई यज्ञ किया जाता है तो अंत में वरिष्ठों की पूजा की जाती है, नियम है यज्ञ का। और यज्ञ का ही नहीं, ये भागवत पढ़ने का भी नियम है, जिस दिन भागवत कंप्लीट हो उस दिन पूजा की जाती है, लिटरली पूजा की जाती है वरिष्ठों की। सो खैर तो सारा हो गया, अग्र पूजा हो रही है, कृष्ण की पूजा करनी है, तो विरोध हुआ और शिशुपाल ने बहुत विरोध किया। शिशुपाल ने भगवान की बड़ी निंदा की, बोलता जा रहा था। भगवान कह रहे थे रुक जाओ शिशुपाल, क्योंकि उन्होंने वचन दिया था उसकी माँ को 100 अपराध तक सहन करूंगा, उसके बाद नहीं। तो शिशुपाल की माँ ने कहा था कि हमेशा जब भी भगवान की निंदा करना काउंट करना, गिनते रहना 98 99, चुप हो जाना, बिल्कुल नहीं बोलना। हर समय ऐसा ही करता था, लेकिन इस बार इतने क्रोध में था, भूल गया, भगवान याद दिला रहे हैं 55 हो गए वो सुना नहीं, 95 हो गए सुना नहीं, और 100 क्रॉस कर दिया, भगवान ने उसका गला काट दिया। और जैसे ही गला काटा, सबके सामने लोगों ने देखा कि उसके शरीर से एक प्रकाश निकला और जाके श्री कृष्ण में मिल गया, एक मुक्ति मिली उसको। इसको देखकर एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि से किया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हुआ कि ये तो पापी था, अधर्मी था, और ये इसको मुक्ति मिल गई, तो समझ नहीं आया, आप समझाइए क्या बात है। तो नारद मुनि बड़े नम्र हैं, नारद मुनि कहते हैं कि इसको मुक्ति इसलिए मिली क्योंकि हमेशा सोचता था भगवान के बारे में। और नारद मुनि कहते मैं तो प्रार्थना करता हूं कि मैं भी इसकी तरह सोचूं। 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता था वो, कैसे उनकी निंदा करनी है, कैसे उनको परास्त करना है, कैसे उनको नीचा दिखाना है, बस यही सोचता था। लेकिन वही सोच क्या रहा था, भगवान के विषय में। इसलिए नारद मुनि बहुत सुंदर बात कहते हैं, गोप्या कामद भयात कंसो द्वेषा चेदादयो नृपः संबंधात वृष्णया स्नेहात यूयम भक्त्याम वयम विभो। वो कहते हैं कि भगवान को प्राप्त करने के बहुत तरीके हैं युधिष्ठिर, और उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं गोप्यः कामात, गोपियों ने भगवान को प्रेम से प्राप्त कर लिया, इतना प्रेम उत्पन्न कर लिया अपने अंदर कि भगवान बाध्य हो गए गोपियों के प्रेम को देखकर, छोड़ नहीं सके गोपियों को। गोप्यः कामात भयात कंसो, कंस ने कैसे प्राप्त किया, डर से, बड़ा डरता था कंस, कृष्ण मार देंगे मुझे, बलराम मार देंगे मुझे, हमेशा डरता था, इतना डरता था, कभी कभी चेहरा जब देखता था शीशे में अपना, तो उसको अपना गला कटा हुआ दिखाई देता था, घबरा जाता था। कभी देखता था कि दो सैनिक आ रहे हैं तो चिल्लाने लगता था, कृष्ण बलराम आ गए, कृष्ण बलराम आ गए। तो इतना डर था उसका कि हमेशा भगवान को स्मरण करता था। तो नारद मुनि ने कहा कि देखो हमसे अच्छे हैं ये लोग, गोप्यः कामात भयात कंसो द्वेष, ये जो शिशुपाल था इसने द्वेष से भगवान को प्राप्त कर लिया, इतना द्वेष था उसके हृदय में भगवान के लिए, द्वेषात कंस। और फिर आगे उन्होंने कहा वृष्णि इत्यादि उन्हें संबंध से और स्नेह से आप सबने प्राप्त किया, तो फिर ये शिशुपाल है कौन। तो अब उनकी कथा वो कहना प्रारंभ करते हैं, और इसीलिए नरसिंह देव की कथा आती है कि कैसे हुआ शिशुपाल के साथ। तो उस समय बड़ा सुंदर वर्णन है कि उन्होंने प्रारंभ किया नरसिंह देव या प्रहलाद के बारे में कहना, और उन्होंने बहुत संक्षेप में कहा, उन्होंने कहा प्रहलाद था, बहुत अच्छा पुत्र था और बहुत सौम्य था, चरित्र बहुत अच्छा था, लेकिन उसका पिता उसे बहुत दंड देता, मारना चाहता था, बहुत अत्याचार करता था। सो परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न आया कि अरे बच्चा खराब होता है तो हम लोग थोड़ा बहुत उसको थप्पड़ मार देते हैं, थोड़ा बहुत उसको शासन करते हैं, लेकिन कोई पिता ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को मारना चाहे, हत्या करनी चाहे, ये कैसा पिता है हिरण्यकश्यपु। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया, नहीं नहीं बताइए कि ऐसा क्यों हो गया कि अपने बच्चे को मारना चाहता था, हत्या करना चाहता था। तो फिर उस समय सुखदेव गोस्वामी ने ये कथा कही। तो ये नरसिंह देव की अब कथा प्रारंभ है। जैसे हम बता रहे थे कि नरसिंह देव को हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए हम लोग पुकारते हैं, है ना, सुरक्षा करें। तो कभी मन में आता है हम तो कृष्ण के भक्त हैं, कृष्ण को क्यों नहीं पुकारते, हमें कृष्ण को बुलाना चाहिए अगर रक्षा चाहिए, नरसिंह देव को क्यों बुलाते हैं। तो इसका उत्तर क्या है? पहला उत्तर है कि कृष्ण और नरसिंह देव में कोई अंतर नहीं है, वही कृष्ण है, वही रूप लिया नरसिंह देव का, तो इसलिए उनको पुकारने में कोई गलती नहीं। दूसरा कारण, कृष्ण थोड़े बिजी रहते हैं, कृष्ण के पास समय कहाँ है, वो बांसुरी बजाएं कि आपको आकर बचाएं, तो वो बांसुरी बजा रहे हैं, गायों की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन वो बांसुरी बजाते बजाते माखन चोरी करते करते हमको संभाल लेते हैं, चाहे नरसिंह देव के द्वारा बचाएं या किसी के द्वारा। इसीलिए रहीम नाम के एक भक्त हुए भगवान के, और उनके दोहे बड़े प्रसिद्ध हैं यहां उत्तर भारत में खास करके। तो रहीम एक बात कहते हैं, रही मन को का करे जुआरी चोर लबा, जो पत राखन हार है माखन चाखन हार, रही मा माखन चाखन हार। तो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं, वो कहते कि कौ क्या करे, वो क्यों, कौन आपका बिगाड़ सकता है कुछ, किसके वर्णन के तीन वर्णन करते हैं वो। वो कहते हैं कि जुआरी चोर लबार, जुआरी मतलब जुआ खेलने वाला, चोर चोरी करने वाला, लबार मतलब एक लंपट आदमी, स्त्रियों के प्रति जो आकर्षित होता है वो आदमी, लंपट आदमी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता आपका। तो क्यों कहा गए तीन, उन्होंने बहुत सुंदर बात है, सबसे पहले उन्होंने कहा जुआरी, रहीमन को का करे जुआरी चोर लबार। तो जुआरी कौन है? जुआरी है शकुनी। महाभारत में जुआरी कौन हुए? सबसे बड़े शकुनी। तो इसीलिए कहा गया शकुनी ने अपनी सारी शक्ति लगा ली कि इन लोगों को राज्य ना मिले, बहुत प्रयास कर लिया उसने, सारे वो पासे गलत फेंकना, धोखा देना, सब कर लिया, लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सका, अंत में पांडवों की विजय हुई। तो इसीलिए कहा गया है जुआरी चोर, और चोर कौन है? दूसरा शब्द चोर क्यों इस्तेमाल किया? चोर है ब्रह्मा जी। समझ चाहते हैं आप में से कोई ब्रह्मा जी के भक्त हो यहां पर, तो चोर है ब्रह्मा जी, चुरा लिए भगवान के बाल बालों को, बछड़ों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, भागवतम में कथा आती है ब्रह्म विमोहन लीला। तो इसलिए वो चोर है, तो हालांकि वो सबको चुरा के ले गए, बालकों को ले गए, बछड़ों को ले गए, कृष्ण अकेले रह गए, लेकिन फिर भी कृष्ण ने क्या किया, वही बालक वही बछड़े वहां प्रकट कर दिए, कुछ कर नहीं पाए ब्रह्मा जी। तो ना शकुनी कुछ कर पाए, ना ब्रह्मा जी कुछ कर पाए, और तीसरा है लबार दुशासन, जो खींच रहा था साड़ी द्रौपदी की, लंपट आदमी, तो उसको वो साड़ी खींच रहा है, निर्वस्त्र करना चाहता है सबके सामने। आप सोच सकते हो वो क्या क्या स्थिति होगी द्रौपदी की, सारी सभा है, उसके वरिष्ठ बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, भीष्म बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, उसके पति बैठे हैं, और सारे सभा में लगा हुआ है सेनापति ये वो, और उनके सामने उसको नग्न किया जा रहा, और वो अपने दोनों हाथों से बचाने का प्रयास कर रही है, बचा नहीं पा रही, दुशासन बहुत शक्तिशाली है, तो खींच रही है और वो भी खींच रहा है। फिर उसने सोचा कि अब भगवान को पुकारते हैं, लेकिन उसको था कि मैं अपनी साड़ी कैसे छोड़ दूं, क्योंकि अगर मैंने भगवान को पुकारने लगा तो साड़ी चली जाएगी। तो उसने एक हाथ से साड़ी पकड़ी है और एक हाथ ऊपर किया है, और भगवान को पुकार रही, भगवान नहीं आए। उसने कहा चलो मैं इस साड़ी के छोर को उसने अपने दोनों दांतों के बीच छपा दबा लिया कि मैं पकड़ के रखूंगी, और दोनों हाथ ऊपर करके भगवान को पुकार रही, भगवान नहीं आए। और फिर द्रौपदी ने सोचा, एक बहुत सुंदर वर्णन किया गया है बिल्वा मंगल ठाकुर के द्वारा, वो कहते हैं कि अग्रे कुरु नाम था पांडवानां दुशासने नाहृत वस्त्र केश। कृष्ण तदाक्रोशदनन्यनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो कहते हैं कि कृष्ण मतलब द्रौपदी, उसने देखा कि और कोई नाथ नहीं है, अब इस जगत में मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, ना मेरे गुरुजन, ना मेरे ससुर, ना मेरे वरिष्ठ, ना मेरे पति, कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, अनन्य नाथा और कोई नाथ नहीं है, केवल कृष्ण है। तो उसने फिर पूर्ण समर्पण कर दिया, उसने वो जो दांत में दबा रखा था उसको भी छोड़ दिया और दोनों हाथ ऊपर करके उसने पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल। और फिर भगवान आए, दुशासन खींचता रहा और साड़ी बढ़ती गई। और इसीलिए हम लोग भी जब भगवान को पुकारते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके हम लोग कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो लबार वो भी कुछ नहीं कर पाया, क्यों? जो पतराखन हार है माखन चाखन हार। सो माखन चोर कर रहे हैं, जो माखन चोरी करते हैं वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो कौन हमारा कुछ नहीं कर सकता? तो इसीलिए चिंता ही मत कीजिए, जुआरी चोर लबार कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। तो ये भाव भक्ति का है, ये समर्पण भक्ति का है, और ये नरसिंह देव की कथा में मिलता है। इसलिए हम नरसिंह देव को पुकारते हैं रक्षा के लिए। सो प्रहलाद के विषय में जब सुना और प्रश्न किया तो उन्होंने वर्णन शुरू किया। इस कथा का जो हमें बहुत सुंदर संदेश देती है, हिरण्यकश्यपु कौन है, हिरण्याक्ष कौन है, तो उनका वर्णन किया गया कि जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, रक्षा कर रहे हैं। और चार छोटे छोटे अच्छे बच्चे आ जाते हैं, वस्त्र भी नहीं पहने हैं, बड़े छोटे बच्चे हैं, आ गए हैं, अंदर जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा, अरे बच्चे हैं, उन्होंने रोका, अरे कहाँ जा रहे हो, अंदर नहीं जाना, भगवान सो रहे हैं। उनको लगा जाकर वो खेलेंगे, खेल कूद करेंगे, आवाज करेंगे, भगवान उठ जाएंगे, नहीं जाना। अरे लेकिन चारों बच्चे तो थे नहीं, ये तो महान ऋषि थे चतुर कुमार। तो चार कुमारों ने गुस्से में आकर श्राप दे दिया कि अरे तुम लोग, तुम्हें पता नहीं रोकना नहीं चाहिए यहां पर किसी को, भगवान के धाम में श्राप दे दिया। फिर बहुत सारी लीला है और आप जानते हैं, जब उनको श्राप दिया भगवान ने खुद आकर क्षमा मांगी है। भगवान आए धाम से बाहर निकलकर, अपने कक्ष से बाहर निकलकर, और चार कुमारों से उन्होंने क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, ये जो मेरे सेवक हैं इन्होंने आपके प्रति अपराध किया। वो देखकर चार कुमारों की आंखों में आंसू आ गए कि हमने क्या कर दिया, ये भगवान हमसे क्षमा मांग रहे हैं जबकि गलती हमारी है, श्राप तो हमने दिया। तो उस समय उन्होंने एकदम क्षमा, उन्होंने भी क्षमा मांगी, लेकिन भगवान ने कहा मेरी योजना से हुआ, तुमने इनको श्राप दिया कि असुर बनेंगे, ये पृथ्वी पर जाएंगे, ये मेरी योजना से है। क्यों? मेरी इच्छा थी कुछ थोड़ा लड़ाई करूं, बोर हो गया था बैठे बैठे। और दूसरा एक कारण भी दिया उन्होंने, भगवान ने कहा कि दरअसल इन लोगों ने एक बार लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था तो लक्ष्मी जी आ रही थी, एक बार भगवान सो रहे थे, जय विजय ने रोक दिया, अंदर नहीं जाना। लक्ष्मी ने क्या, मुझे मेरा घर है, मेरे पति हैं, अरे सो रहे हैं अभी भगवान, अंदर नहीं जाना। तो लक्ष्मी जी ने आके शिकायत लगाई, और भगवान को कुछ तो करना था, होता है ना पति से अगर कोई पत्नी शिकायत लगाए, पति को कुछ तो करना पड़ता, नहीं तो शाम को खाना नहीं मिलेगा। तो शिकायत लग गई, तो फिर भगवान ने कहा ठीक है उसको दंड देंगे। तो भगवान को याद था, चलो भगवान ने कहा दोनों तीनों बातें एक साथ हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा लक्ष्मी जी को भी रोक दिया था इन लोगों ने, दंड मिलना ही था। तो अब दंड दिया गया कि जाओ असुर बनो, तीनों तीन जन्म लो। तो पहला जन्म उनका हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में। तो दोनों आए इस पृथ्वी पर, बड़े भयंकर राक्षस बने, और उसमें फिर हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह रूप में मार दिया, खत्म कर दिया। तो जब मर गया, हिरण्यक्ष का शरीर पड़ा था, सब रो रहे थे, तो हिरण्यकश्यपु आया और उसने बड़ा ज्ञान दिया। उसने कहा रोना नहीं चाहिए, शरीर आत्मा अलग अलग है, क्यों चिंता करते हो इस सब चीजों में? ये हिरण्यकशिपु कह रहे हैं, भगवान नहीं कह रहे हैं, ये सब चिंता मत करो। हम लोग तिनके की तरह साथ में आते हैं फिर अलग हो जाते हैं, इसमें रोना क्यों? उनकी उनकी जो माता थी और जो हिरण्याक्ष की पत्नी थी वो सोच रही थी कितना ज्ञानी व्यक्ति है देखो ये, और सही में था ज्ञानी। लेकिन जैसे ही वो अंतिम क्रिया करके बाहर आया उसने कहा ये विष्णु को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। देखिए केवल ज्ञान लेना बहुत नहीं है, हमें शास्त्र पता हो, हमें श्लोक पता हो, हमें ये पता हो, हमें वो पता हो, हमें आत्मा का ज्ञान हो, हृदय में प्रेम चाहिए भगवान के प्रति। तो उसको ज्ञान था लेकिन बाहर आकर क्या कह रहा है, मार डालूंगा विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। तो हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गए, उन्होंने सोचा कि मुझे बहुत कड़ी तपस्या करनी चाहिए, पहले तो उत्पात मचाया फिर तपस्या। किस लिए? क्योंकि ब्रह्मांड के स्वामी बनना चाहते थे। देखिए जीवन में अगर तपस्या करनी है तो भगवान को पाने के लिए कीजिए। आप लोग सब तपस्या करते ही है ना, लोग बहुत ज्यादा ऑफिसों में जाते हैं, काम करते हैं सुबह से शाम तक, तपस्या नहीं तो और क्या है? मंदिर नहीं आते हैं क्योंकि ऑफिस जाना है, इतनी तपस्या करते हैं। लेकिन किसके लिए? थोड़ा सा कुछ धन कमाने के लिए। तपस्या होनी चाहिए भगवान को प्राप्त करने के लिए, ये हिरण्यकश्यप मत बनिए। तपस्या करनी है तपस्या करिए, लेकिन भगवान को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसे हिरण्यकश्यप ने बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस छोटी सी चीज चाहिए ब्रह्मा जी। अच्छा क्या चाहिए बताओ? मरना नहीं चाहता। ब्रह्मा जी ने सर पे हाथ मारा, ब्रह्मा जी ने कहा भाई मरना तो मुझे भी पड़ेगा, तुमको कहां से मैं आपको वरदान दे दूं? ब्रह्मा जी को भी मरना पड़ता है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं दे सकता, कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने क्या सोचा, उसने बड़ी बुद्धि लगाई अपनी, उसने कहा मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, मनुष्य से नहीं मरूं, जानवर से नहीं मरूं, ये सारा किसी हथियार से नहीं मरूं, सब उसने पूरा सोच लिया। और ब्रह्मा जी ने भी कह दिया ठीक है, क्योंकि ब्रह्मा जी को मालूम था कि भगवान बड़े चतुर हैं, भगवान के सामने चालाकी नहीं दिखानी चाहिए। हम लोग दिखाते हैं ना भगवान के सामने चालाकी, हम सोचते हैं भगवान देख नहीं रहे, मैंने जो किया वो भगवान ने देखा नहीं, है ना, होता है ना ऐसा, प्रवचन में देर से आते पीछे बैठ जाते हैं, भगवान ने देखा नहीं, बड़ी चालाकी करते हैं भगवान के साथ। भगवान सब देख रहे हैं, अब कितने बजे आए, क्या किया, सुना नहीं सुना, तो भगवान से चालाकी नहीं करनी चाहिए। और क्या क्या चालाकी करते हैं लोग भगवान से? बहुत सारी चालाकी करते हैं। जब भगवान को कुछ देना होता है तब बड़ी चालाकी मन में आ जाती है, जैसे मान लीजिए कि भगवान को कुछ दान देना है तो हम सोचते हैं, जैसे एक बार एक व्यक्ति था तो उसने भगवान से वचन दिया कि भगवान आप मुझे मेरा व्यापार अच्छा करा दो, आपको 50% जो भी मेरी कमाई होगी उसका 50% दे दूंगा। तो उसको बहुत सारा पैसा मिला, इतना पैसा कि जब 50% वो लेकर गया भगवान को देने के लिए तो पूरा बैग भर कर पैसा था, इतना पैसा मिल गया। तो वो जब पहुंचा देने के लिए, रुका हुआ था, जाना था अगले दिन दर्शन के लिए, तो वो सोचने लगा भगवान को इतना सब क्यों चाहिए? ठीक है मैंने कहा था कि 50% दूंगा, लेकिन ये पूरा बैग भर के भगवान, उसने आधा निकाल के अलग रख दिया उसमें से भी, नहीं नहीं इतना ही दूंगा, सो गया। सुबह उठा जब जाने लगा तभी उसने सोचा कि ये थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, इतना क्यों देना है भगवान को, उसमें से भी निकाल दिया उसने। फिर थोड़ा जाने लगा, बैग उठाया तो लगा कि होता है ना, देने में बड़ा दिल दुखता है, अरे मैंने कमाया है, भूल जाते कहां से आया तो मैंने कमाया, दिया भगवान ने। तो उसने सारा निकाल निकाल के फाइनल में 2000 रुपया रखा खाली, कि 2000 रुपया दूंगा भगवान को, बाकी नहीं। तो वो गया देने के लिए, 2000 रुपया दरअसल हुंडी में डालना था, तो जो बालाजी की हुंडी, बालाजी मंदिर में हुआ था ये तिरुपति में, तो आपने देखी है बालाजी मंदिर, कितने लोग गए तिरुपति यहाँ से, 2-4 लोगों के, उसमें बड़ी ऐसी हुंडी बनी हुई है ऐसे हाथ डालकर, उसमें डाल देना पड़ता है, सब अंदर चला जाता, फिर निकाल नहीं सकते। तो उस समय उसने बड़ी चालाकी की कि बैग में कम से कम समझ लीजिए कि अगर 5 लाख रुपया था, उसको कम कर कर करके 2000 रुपये पे आ गया और 2000 रुपये लेकर गया भगवान की हुंडी में डालने के लिए। और जैसे ही उसने भगवान की हुंडी में 2000 रुपये डाला, उसने एक अंगूठी पहनी हुई थी जिसमें 15 लाख का हीरा लगा हुआ था। सो उसने ऐसे डाला 2000 रुपया, हाथ निकाला और देखा कि अंगूठी गायब, अंगूठी 15 लाख की अंदर चली गई। 5 लाख देना था, लाया था भगवान को देने के लिए, 2000 कर दिया और जब हाथ डाला तो 15 लाख का हीरा अंदर। तो चिल्लाने लगा, उसने बुलाया सब पुलिस वालों को, बुला बुला, अरे अरे मेरी अंगूठी अंदर चली गई, निकालो उसको। तो वहां पर पुलिस वालों ने कहा, जो भी अंदर जाता है वो बालाजी का होता है, हम लोग हाथ नहीं लगा सकते उसको, अभी गया। इसलिए भगवान से चालाकी नहीं करनी चाहिए, भगवान जब हमसे बहुत आगे चलते हैं, है ना, चालाकी करने। तो यहाँ हिरण्यकश्यप चालाकी कर रहा था कि चलो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए बच जाऊं, लेकिन भगवान उसको मारने वाले हैं आगे चलकर। तो ऐसे भगवान उन हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, और जब हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे तो उनकी जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उनके गर्भ में एक बालक था। तो इंद्र ने देखा कि एक हिरण्यकश्यप बहुत है हमारे लिए, और ये दूसरा पैदा होगा इसके गर्भ से, ये तो हमारा क्या करेगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी पत्नी का हरण कर लिया कि ले जाते हैं इसको, रखेंगे, जिस दिन बच्चा होगा उसी दिन काट डालेंगे उसको, हिरण्यकश्यप बनने ही नहीं देंगे इसको। लेकिन खैर ले जा नहीं सके, नारद मुनि ने रोक दिया। और नारद मुनि ने कहा इसके गर्भ में बहुत बड़ा महान भक्त है भगवान का, तो सबने प्रदक्षिणा की, क्योंकि जो भक्त होते हैं उनको आदर दिया जाता है, तो सारे देवताओं ने प्रदक्षिणा की। कयादु, कयादु उनकी माँ का नाम था प्रहलाद महाराज की, और फिर वो चले गए। तो ऐसे ये प्रारंभ है नरसिंह कथा का। अब आगे आप लोग आने वाले रविवारों में इस कथा को और आगे सुनेंगे, क्योंकि भगवान नरसिंह देव 5 भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए आए हैं, केवल प्रहलाद के लिए नहीं आए हैं, 5 भक्तों की। और वो कौन कौन से भक्त हैं आगे आने वाले रविवारों में आप सबको सुनाया जाएगा। सो कृपया ये अभी कथा केवल अभी हमने प्रारंभ की है, और हम देख रहे हैं समय बहुत हो गया है, तो इसको और आगे अगले रविवार को आप लोग यहाँ पर सुनेंगे। तो कृपया आते रहिए, और आप सबके आभारी हैं कि आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आते हैं हर रविवार को, और भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की कथा के श्रवण का लाभ क्या है और नाम लेने का लाभ क्या है, कि जब हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो जब कानों से वो कथा होकर अंदर जाती है हृदय में, तो हृदय पूरा साफ हो जाता, भगवान प्रवेश करते हैं कानों के द्वारा हमारे हृदय में। और जब हम मुख से उनका नाम लेते हैं, कानों से सुनते हैं मुख से नाम लेते हैं, तो ये एक भगवान को धन्यवाद देने की, पुकारने की विधि है। इसलिए हम सबको ये जप रोज करना चाहिए, ध्यान रखिए रोज करना है भगवान का नाम। और अगर जिस दिन नहीं करना है, ऐसा है कि रोज क्यों करना है, तो क्या याद करना चाहिए आपको, क्या बताया था हमने शुरुआत में, हवा रोज लेते हैं, पानी रोज पीते हैं, खाना रोज खाते हैं, और उसका धन्यवाद देने के लिए हमें रोज भगवान का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और अभी हमारी इच्छा है कि हमने नाम के लिए इतना कहा है,